नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना।
Yeah. प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आपको नमस्कार। आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें, लेकिन इससे पहले हम परमेश्वर के निकटता में आए और प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि प्रभु हम इस जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें। इस वक्त जब हम आपके जीवित वचन से सीखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए, ताकि ये वचन हमारे हृदयों से बातचीत करे और हम आज के दिन नए रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखने पाए। इस समय को हम में से हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 22 से 25 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूं, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित लगाया। यहां परमेश्वर इसराइलियों को छुड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। मूसा को छुड़ाने वाला बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। परमेश्वर ने इसराइलियों को इसलिए नहीं चुना था कि वे मिस्रियों से श्रेष्ठ थे या उसके प्रति ईमानदार और निष्ठावान थे या वे मूर्ति पूजा में नहीं गए थे। ये लोग परमेश्वर के प्रति सबसे कम निष्ठावान थे। उन्होंने उसकी अपेक्षा मूर्तियों की सेवा अधिक की। आप ये याद करेंगे कि जब वे मिस्र से छुड़ाए गए और मूसा उन्हें एक उजाड़ स्थल में ले गया, तो उसके बाद इसराइली लोगों ने पूजा करने के लिए सोने का बछड़ा बनाने में देर नहीं की। परमेश्वर की उनको बचाने की इच्छा इसलिए थी क्योंकि वे असहाय, निराशजनक परिस्थिति में बंधुआई में पड़े हुए थे। यदि कोई उनके निमित्त हस्तक्षेप न करता तो वे नाश हो गए होते। परमेश्वर इसराइल को छुड़ाने के विषय में 2 दलील देते हैं, अर्थात 2 कारण देते हैं। पहला, उसने उनके विलाप को सुना। दूसरा, उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपनी वाचा को याद किया। इसराइल की भीषण और निराशजनक परिस्थिति ने परमेश्वर के हृदय से आग्रह किया और उसकी इस प्रतिज्ञा ने कि वह अब्राहम की संतान को 400 वर्ष के बाद उनके देश में वापस लाएगा, परमेश्वर को प्रेरित किया कि वह उन्हें छुड़ाने के लिए एक योजना बनाए। मित्रों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको मुक्ति दिलाई है या छुड़ाया है? अर्थात, अगर आप मुक्त किए गए हैं तो परमेश्वर ने हमें उसी निमित्त बचाया है जिसके निमित्त उसने इसराइलियों को बचाया था। उसने हमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जिसके कारण या जिसके द्वारा से हम बचाए जाते या बुलाए जाते। वह इसे कुछ हद तक स्पष्ट कर देते हैं कि हम अपनी किसी योग्यता के कारण नहीं बचाए गए हैं। पौलुस इस बात को रोमियो के पत्र उसके 3 अध्याय उसके 23 और 24 पद में समझाता है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत मेंत शब्द का अर्थ है बिना किसी कारण के या मुफ्त में। हम अपने पापों से बिना किसी कारण के बचाए गए हैं। हमारे परमेश्वर ने इन्हीं शब्द को तब भी कहा था जब बिना किसी कारण उनसे घृणा की गई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 25 पद में भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मुझे देखकर यह नहीं कहा कि मेरे प्रिय तुम श्वेत और प्रोटेस्टेंट पंथ के हो या मानने वाले हो, ईमानदार और मेहनती हो, और मैं तुम्हें मुक्ति देने वाला हूं। इस विषय की सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने हमें पाप और अज्ञानता के कालेपन और अंधेरेपन में देखा था। उसने देखा कि हम निराशजनक रूप से हारे हुए और खुद को बचाने में योग्य नहीं है। परमेश्वर के प्रेम ने एक मुक्तिदाता का प्रबंध किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मित्रों, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। फिर भी यह उसकी कृपा थी जिसने हमें बचाया, उसके प्रेम ने नहीं। हम बिना किसी कारण के उसी बड़ी कृपा से उस छुटकारे के द्वारा बचाए गए हैं जो मसीह यीशु में है। कई लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर ने उनमें उद्धार के योग्य कुछ देखा था। वे यह मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें पापियों के रूप में बचाया। पर यह इसलिए क्योंकि उसने देखा था कि वे कैसे प्यारे जन बन सकते हैं। मित्रों, मैं यह कह सकता हूं कि यह विचार पूर्ण रूप से गलत है। हम कभी प्यारे नहीं बनेंगे। हम में से हर एक के पास वो पुराना स्वभाव है जिसमें कि कोई अच्छाई निवास नहीं करती है। रोमियो की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। मानो यह एक जूती है जो सचमुच में यह बताने के लिए काटती है कि मनुष्य के भीतर जरा सी भी अच्छाई नहीं है। हमारे अंदर में ना कोई अच्छाई थी और ना रहेगी, इसलिए हम कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव दिया है, और यह तब होता है जब हम बचाए जाते हैं। हमें पुराने स्वभाव को अंततः नष्ट कर देना चाहिए। परमेश्वर ने इसराइलियों में कोई भी अच्छाई नहीं देखी थी, पर उसने इसराइलियों की बंधुआई में उनकी पुकार और उनकी दुहाई को सुनी और उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हमारी असहाय परिस्थिति को देखा और हमें बचाया। परमेश्वर के पास एक योजना थी, परंतु उसने मानव प्रजाति से यह नहीं पूछा कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए मेरी यह योजना है, अगर ये तुम्हें अच्छा लगे तो मैं इसके अनुसार चलूंगा। जी नहीं, परमपिता परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया कि वो जाए और संसार के पापों के लिए अपना बलिदान दे। पुत्र आने को राजी हुआ और पिता ने सहमति दी कि जो कोई भी उद्धार के निमित्त यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा, अर्थात उद्धार पाएगा, और उसमें से आप भी हो सकते हैं। आगे परमेश्वर कहता है, यह उद्धार मैं तुम्हें देता हूं, इसे ग्रहण करो या त्याग दो। वह चाहता है कि हम इसे ग्रहण करें, परंतु निर्णय लेना हर एक पर छोड़ दिया गया है। एक छोटे कद की स्त्री थी जो बड़े परिश्रम से धुलाई का काम करती थी ताकि वह अपने बेटे को विश्वविद्यालय भेज सके। जब वह छुट्टी के लिए घर वापस आया तो उसने आधुनिक स्वतंत्र अध्ययन के तरीके से जो भी सीखा था उससे उसका मन परमेश्वर के प्रति अविश्वास और संदेह से भर गया। वह ये नहीं चाहता था कि उसकी खोज में आए परिवर्तन के बारे उसकी माँ को पता चले। वह उसे कहती रही कि यह परमेश्वर की कितनी अद्भुत कृपा थी कि उसने मुझे बचाया और कैसे मुझे पता चला कि मैं बचाई गई थी। आखिरकार वह उसकी और बातों को न सुन पाया और बोल उठा, माँ तुम यह नहीं समझ पा रही हो कि तुम इस ब्रह्मांड में कितनी छोटी हो। अगर तुमने अपनी आत्मा को खो दिया तो परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं होगी। माँ ने तुरंत जवाब दिया, परंतु मेज पर रात्रि का भोजन सजाती रही। फिर वह बोली, तुमने जो कहा मैं इस विषय पर सोच रही थी, तुम सही हो। मेरी छोटी सी आत्मा का परिणाम अधिक नहीं होगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं खोया होगा और न ही परमेश्वर ने ज्यादा खोया होगा, परंतु अगर वह मुझे नहीं बचाता तो वह मुझसे भी ज्यादा खो देता। उसने वादा किया था कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगी तो वह मुझे बचाएगा। अगर वह अपने वचन को तोड़ता है तो वह अपने यश को खो देगा और अपनी प्रतिष्ठा को खोएगा और अपने चरित्र को बिगाड़ देगा। मित्रों, परमेश्वर मनुष्य जाति से इसी बात को कह रहा है। इसराइल के बच्चों में कोई आकर्षक बात नहीं थी, पर फिर भी उसने उनकी प्रार्थना सुनी। हमें भी कोई प्यारी चीज नहीं थी जो उसे हमें बचाने के लिए प्रेरित करती। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से सहमति की थी जो इसराइल के छुटकारे का वादा करती है। वह इसके लिए भी राजी हुआ था कि जो कोई यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानेगा उससे वह बचाएगा। कृपा कार्य के द्वारा प्रकट किया गया जो प्रेम है। वो हमें अपनी कृपा से बचाते हैं और उसके महान प्रेम ने उद्धार दिया। मित्रों, यहाँ पर 2 अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से आरंभ करेंगे। तो आइए अब हम इस नए विषय पर मनन करें। वे कुछ इस प्रकार से हैं, मूसा की बुलाहट, जलती हुई झाड़ी, आकाशवाणी का होना, मैं हूं अर्थात यहोवा हूं, पवित्र छुटकारे का अभिवाचन, मूसा का परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करने से हिचकिचाना, मूसा की नियुक्ति, मिद्यान में मूसा के 40 वर्ष पूरे हुए, उसकी सारी शिक्षा जो मिस्र में हुई थी उसके महान काम को पूरा करने यानी इसराइलियों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए काफी नहीं थी। परमेश्वर ने इस कार्य की तैयारी करने के लिए 40 वर्षों तक मूसा को मिद्यान देश की रेगिस्तान में रखा। मित्रों, मूसा की बुलाहट, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक विद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा यह देखने के लिए एक ओर मुड़ा कि झाड़ी क्यों जल रही है पर वह नष्ट नहीं हो रही है। उसमें से एक सबसे बड़ा अर्थात सबूत यही है कि यह शास्त्र अभी भी इसराइल के राज में मौजूद है। कुछ सालों पहले एक सम्राट ने अपने पुरोहित से एक दिन पूछा, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है? उस सबूत मेरे ही राज में कहीं पर है। बिना किसी झिझक के पुरोहित ने कहा, महाशय, यहूदी ही वह सबूत है। वह एक जलती हुई झाड़ी जिसने अविश्वासियों को उसी तरफ मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक अद्भुत बात है कि वह अभी भी इतने शताब्दियों के बाद भी मौजूद है। मूसा के दिनों से लेकर आज तक के समय में अभी तक वह मौजूद है। बाकी सारे राज्य आए और चले गए, उसने सबकी अंतिम क्रिया में भाग लिया, परंतु वह अभी भी आसपास है। इसराइल मिस्र की बंधुआई से शताब्दियों से लेकर अभी वर्तमान समय तक उपद्रव के आग में है, पर जलती हुई झाड़ी की तरह इसराइल नष्ट नहीं हुआ। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने आखिरी बार कब मिद्यानियों को देखा था? क्या आपने कभी मिद्यान के झंडे को देखा है? क्या आप मिद्यान की सरकार के बारे में कुछ जानते हैं? आप भी नहीं और मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मिद्यान जा चुका है, यह गायब हो चुका है। परमेश्वर का दूत जो मूसा के सामने प्रकट हुआ था वह और कोई नहीं परंतु देह धारण करने से पहले प्रभु यीशु मसीह थे। कुछ लोग इस परिणाम पर बहस करते हैं, पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद यह मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 से 5 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर को मूसा के शिष्टाचार को बदलना था। हालांकि वह फिरौन के महल में बड़ा हुआ था, फिर भी नहीं जानता था कि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जूतों को उतारना होता है। और आज मैं भयभीत हूं कि बहुत से लोग आज परमेश्वर से परिचित हो जाते हैं और अपने पैरों की जूती उसके भवन में नहीं उतारते हैं। परमेश्वर उसे बड़ा पाठ सिखा रहे थे परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। हमें भी इस पाठ को सीखने की उतनी ही आवश्यकता है। हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। मूसा ने परमेश्वर की ओर नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो वो परमेश्वर के प्रकटीकरण की ओर प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप में उस प्रकटीकरण में देख पाता। यह अभी भी कहा जा सकता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया। योहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद में हम इसे पाते हैं। आप परमेश्वर को सिर्फ एक ही तरीके से जान सकते हैं और वो भी यीशु मसीह के द्वारा। निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनकी दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। मित्रों, जब परमेश्वर बचाता है तो वह सिर्फ कुछ चीजें ही नहीं देता, अर्थात नहीं बचाता, वह हमेशा ही कुछ बातों के लिए हमें बचाता है। हम पापों से पवित्रता और स्वर्ग के लिए बचाए गए। पौलुस इस विचार को इफिसियों के पत्र 2:5-6 में हमें समझाते हैं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यदि हम पापों में मर गए होते तो परमेश्वर हमें जल्द से जल्द मसीह के साथ कर देता। परमेश्वर की दया से हम बचाए गए और हम साथ में ही ऊपर उठाए गए होते और हमें स्वर्ग पर यीशु मसीह की जगह पर साथ बैठाया जाता। परमेश्वर ने हमें ऊपर उठाया और हमें प्रभु यीशु मसीह में एक पद दिया। अगर आप आज बच गए हैं तो आप पूरी तरह से बचा लिए गए हैं। जैसे आप अभी के लिए बचाए गए हैं, उसी प्रकार लाखों सालों के लिए भी बचाए जा चुके हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं। आप आदम से बाहर निकाले जाकर यीशु मसीह में रखे गए हैं। आप मृत्यु से बाहर निकाले जाकर जीवन में रखे गए हैं, अर्थात अंधकार से निकाले जाकर प्रकाश में लाए गए हैं। आप नर्क से बाहर निकाले जाकर स्वर्ग में रखे गए हैं। यह छुटकारा है, यह कहीं से बाहर निकालकर अंदर डाला जाना है। परमेश्वर ने कहा, मैं इसराइलियों को बंधुआई से बाहर निकालूंगा और एक अच्छा भूमि पर रखूंगा। यही परमेश्वर का उद्धार है और यही छुटकारा है। मित्रों, मैं समझता हूं कि हम सबको उद्धार की आवश्यकता है ताकि हम सब बच जाएं, लेकिन आज ही हम सबको निर्णय लेना है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पापों से मुक्ति पाएं तो यीशु मसीह के पास आइए। वह आपके सब प्रकार के बड़े और छोटे पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि वह आपके पापों के बदले में मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वही परमेश्वर है जो जीवित है और वह आज आपके पापों को क्षमा करने में सक्षम है। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि आप पापी हैं और अपने पापों से फिरकर उसकी ओर आते हैं, तो ये निश्चय जानिए कि वह शांति आपको जरूर देंगे। वो आपसे प्रेम करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। यदि आप फिरकर उसके पास आते हैं तो वह अवश्य ही आपको अपने पापों से क्षमा प्रदान करेंगे। मित्रों, ये समय है कि हम थोड़े अपने जीवन के बारे में रुककर विचार करें कि जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या सचमुच में परमेश्वर के योग्य जीवन है? क्या हमारे जीवन में अच्छाइयां हैं? क्या हम अच्छे कार्यों के द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं? ये असंभव है, क्योंकि हम पापी हैं और अपने कार्यों के द्वारा से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को इस जगत में आना पड़ा ताकि वह मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए और उस बहुमूल्य कीमती लहू को बहा दे, ताकि उस लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाएं और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये कितना ही अच्छी बात है कि हम ऐसे अवसर को पाते हैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दिया है। आज ये समय है कि आप प्रभु यीशु के पास आएं, उससे प्रेम करें, अपने गुनाहों को मान लें और इस बात को निश्चित कर लें कि वह आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लें, क्षमा प्राप्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। आपसे प्यार करते हैं, आपकी चिंता करते हैं और ये समय आपके लिए है। आइए हम थोड़े समय रुक करके प्रार्थना करें और प्रभु से सहायता मांगे। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। हमने इस बात को जाना है कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं और सिर्फ आप हैं जो आपने हमारे पापों को अपने ऊपर में उठा लिया। हमारे बदले में आप मर गए ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई बहन आज अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, अपने गलतियों का एहसास कर रहे हैं, आप उनकी सहायता करें, उनके पापों को क्षमा करें। हर एक बुरे आदतों से, बुरे विचारों से, बुरे संगति से आप उन्हें छुटकारा दें, ताकि वे आप में बढ़ें और आपके बेटे और बेटियां बनकर आपको महिमा दे सकें। इस समय हम फिर से बात धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है, इसलिए हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान अवश्य रखें। प्रभु आपको आशीष दे।
कितना मधुर है यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, कितना सुंदर है, कितना मधुर है यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, पर्वत से भी ऊंचा यीशु, कौन है तेरे समान, यीशु कौन है तेरे समान, कितना सुंदर है, कितना यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।